अभिमन्यु को गायब हुए लगभग 20 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। ना तो पुलिस को कोई जानकारी मिली थी और ना ही इशिका कुछ पता लगा पाई थी। हालांकि वो पूरे दिन दिशांक के साथ हर उस जगह पर जा रही थी जहां मालविका अभिमन्यु को लेकर जा सकती थी। इस तलाश के दौरान वे उस होटल में भी गए थे जहां आशीष की मौत हुई थी, लेकिन वो जगह भी उन्हें खाली मिली। इशिका ने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया था, ऊपर से वो प्रेग्नेंट थी और शाम तक बहुत ज्यादा थक भी गई थी। ऐसी हालत में भी इशिका अभिमन्यु को ढूंढना चाहती थी, लेकिन दिशांक उसे जबरदस्ती राजवंश विला ले आया था। वहीं अभिमन्यु के बारे में राजवंश परिवार भी जान चुका था। वसुधा जिद करके बाहर दरवाजे से कुछ दूर वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। जब भी कोई हलचल होती उन्हें यही लगता कि अभिमन्यु वापस लौट आया है। राधिका ने उन्हें समझाते हुए कहा, आंटी मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, हम सब भी अभिमन्यु के लिए उतने ही परेशान हैं, लेकिन प्लीज आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं राधिका, जब तक मैं मेरे बच्चे को सही सलामत अपनी आंखों के सामने नहीं देख लेती मैं यहाँ से हिलने वाली तक नहीं हूँ। इशिका से बात हुई क्या? क्या उसे अभिमन्यु मिल गया है? वसुधा ने रुआंसी आवाज में कहा। उन्हें पता था कि इशिका अभिमन्यु को ढूंढने गई है, तो वो जरूर उसका पता लगाकर ही वापस आएगी। मैंने उसे कॉल किया था लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है, पता नहीं दोनों बच्चे किस हाल में कहाँ होंगे, राधिका ने परेशान स्वर में कहा। उसकी पलकें भी गीली हो रही थीं। अभिमन्यु का इस तरह अचानक गायब होना उनके लिए किसी झटके से कम नहीं था। इस बीच गेट से गाड़ी आने की आवाज आई तो वसुधा जल्दी से उठकर खड़ी हो गई थी। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन राधिका ने आकर उन्हें पकड़ लिया था। गाड़ी आगे ही आने वाली है आंटी, राधिका ने उन्हें समझाते हुए कहा। अगर वो उन्हें नहीं संभालती तो वसुधा गिर सकती थी। वसुधा की नज़रें एकटक दरवाजे पर टिकी हुई थीं, लेकिन उन्होंने देखा कि दरवाजे के अंदर से इशिका या अभिमन्यु की गाड़ी के बजाय पार्थ की गाड़ी अंदर आ रही है, तो एक बार फिर वही मायूसी के भाव उनके चेहरे पर उभर आए थे। पार्थ गाड़ी से निकलकर वसुधा के पास आया और बोला, अभिमन्यु वापस आ गया है क्या दादी? वसुधा ने बिना कुछ कहे सिर ना में हिला दिया। उनकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया था, अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। वसुधा ने सुबकते हुए धीरे से कहा, इससे अच्छा तो मुझे कुछ हो जाता। उसने कभी अपनी जिंदगी में खुशियां नहीं देखी। इशिका के आने के बाद मेरा बच्चा खुश रहने लगा था, लेकिन उसकी खुशियों को नजर लग गई। दादी आप बुरा क्यों सोच रही हैं? हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे, वो कोई बच्चा नहीं है, उसने पूरे राजवंश एम्पायर को संभाल रखा है। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ भी गई होगी, लेकिन वो उससे बाहर निकलकर जरूर आएगा, पार्थ ने उन्हें तसल्ली दी। अभिमन्यु के गायब होने से परेशान तो वो भी हो गया था। एक ही दिन में वसुधा का चेहरा कमजोरी से पीला पड़ गया था। पार्थ ने राधिका से कहा, आंटी प्लीज आप दादी को अंदर लेकर जाइए, अगर अभिमन्यु आया तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बोलते हुए उसने वसुधा को दोनों हाथों से पकड़ा और प्यार से कहा, मेरा यकीन कीजिए दादी, मैं यहाँ से हिलूंगा तक नहीं, लेकिन आपको आराम करने की सख्त जरूरत है। अगर अभिमन्यु ने आपको इस हालत में देखा तो वो हम सबसे गुस्सा होगा कि हमने आपका ख्याल नहीं रखा। गुस्सा तो मैं उससे होने वाली हूँ, न जाने बिना बताए कहाँ चला गया, इस उम्र में भी अपनी दादी को चैन से नहीं रहने देता है, वसुधा ने भरी आवाज में कहा। पार्थ वसुधा को अंदर जाने के लिए समझा रहा था, लेकिन वो तो जैसे किसी की सुनने के लिए तैयार तक नहीं थी। इस बीच फिर से एक गाड़ी की आवाज आई तो उनकी उम्मीद बढ़ गई थी। इस बार इशिका और दिशांक आए थे। इशिका को देखते ही वसुधा जल्दी से उसकी तरफ चल पड़ी। जैसे ही इशिका गाड़ी से बाहर निकली उसका चेहरा देखते ही वसुधा को समझ आ गया था कि उसे अभिमन्यु नहीं मिला है। पूरे दिन इधर उधर भटकने की वजह से वो भी काफी थक गई थी, उसकी आंखें भी रोने की वजह से हल्की सूजी हुई थीं। इशिका के पास आते ही वसुधा उसके गले लग गई। वो रोते हुए बोली, बहू मेरा बच्चा कहाँ चला गया? तुम्हारा कॉल तो वो कभी इग्नोर नहीं करता है, तुम कॉल करके देखो उठा लेगा। इशिका ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो रोने लगी। पूरे दिन से इशिका हिम्मत करके अभिमन्यु को ढूंढ रही थी, लेकिन शाम को अंधेरा होने के साथ ही उसकी उम्मीदें घने अंधेरे में खो गई थीं। वसुधा के गले लगते ही उसके सब्र का बांध टूट गया था और हिम्मत भी जवाब दे गई थी। वसुधा जो अब तक अभिमन्यु के लिए इतना बेसब्र हो रही थी, उन्होंने इशिका को रोते हुए देखा तो वो उसे सहलाकर बोली, बहू तुम रो क्यों रही हो? वो अभी आ जाएगा, किसी मीटिंग में फंस गया होगा। अब तक वसुधा किसी की नहीं सुन रही थी, लेकिन इशिका को परेशान देखकर उल्टा वो उसे समझाने लगी। वसुधा इशिका से अलग हुई और उसका चेहरा अपने हाथा में भरकर कहा, कुछ खाया क्यों नहीं पूरे दिन से? इतनी कमजोर लग रही हो। कुछ करने का मन नहीं कर रहा है दादी, ऐसा लग रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है, वो मेरे पीछे पड़ी है, मुझ तक नहीं पहुंच पाई तो अभिमन्यु को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इशिका ने बुझी हुई आवाज में कहा। मालविका पर उन सबको गुस्सा आ रहा था। वसुधा कुछ कहती उससे पहले एक और गाड़ी के आने की आवाज आई और इसी के साथ उनकी उम्मीद फिर से बढ़ गई थी। लेकिन इस बार वहां कोई और नहीं बल्कि नक्श आया था। बार बार गाड़ियां आने की वजह से गार्ड्स ने मेन गेट को खोल दिया था। नक्श को देखते ही इशिका ने तुरंत अपने आंसू साफ किए। वो नक्श के सामने किसी भी तरह से कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। नक्श जल्दी से उनके पास आया। उसने किसी और की तरफ ध्यान तक नहीं दिया, सीधी उसकी नजर इशिका पर पड़ी। इस वक्त वो काफी थकी हुई और परेशान लग रही थी, और ये किस वजह से था ये उसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। नक्श ने परेशान स्वर में इशिका से कहा, एक ही दिन में क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। मैंने कितनी बार कहा है कि तुम अकेली नहीं हो। चलो जाकर चेंज करके आओ और फिर हम खाना खाने चलते हैं। हर कोई नक्श की इस हरकत पर उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। उनके लहजे को समझते हुए नक्श ने कहा, आप लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि चाचू अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। एक दो दिन में डेड बॉडी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इशिका ने उसके गाल पर कसकर तमाचा लगाया। उसने उसे वार्निंग फिंगर दिखाते हुए कहा, दफा हो जाओ यहां से, और खबरदार जो मेरे अभिमन्यु के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा। आई टेल यू नक्श, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। नक्श का हाथ अपने गाल पर लगा हुआ था। अगर नॉर्मल सिचुएशन में इशिका उसे थप्पड़ लगाती तो उसे जरूर गुस्सा आता, लेकिन इस वक्त वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत। ऐसी सिचुएशन में कोई भी अंदर से टूट जाता है और एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। जब तुम्हारे मरने की खबर मिली थी तब मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। हाँ, ये बात अलग है, जिसके लिए आज तुम रो रही हो उसे तो कोई फर्क तक नहीं पड़ा था, नक्श ने सिर हिलाकर कहा। नक्श की हरकतें अब पार्थ के लिए भी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो नक्श के पास बढ़ते हुए बोला, लगता है बाप और दादा के जेल में जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन जरूर हिल गया है। मैं एक दो अच्छे डॉक्टर रेकमेंड कर सकता हूँ। नक्श ने पार्थ की तरफ खा जाने वाली निगाहों से देखा और कहा, आप जानते हैं ना कि आप किसके बेटे हो। मेरे डैड आपके सगे भाई हैं और आप उनके बारे में भला बुरा बोलकर अपने सौतेले भाई का साथ दे रहे हो। आपसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन प्लीज हमारे मामले में बीच में मत बोलिए।
अच्छा, पार्थ ने भौहें उठाकर कहा, इशिका का मामला तुम्हारा मामला कब से हो गया? तुम क्या अभी भी उस डे ड्रीम में जी रहे हो जब तुम दोनों कॉलेज में एक साथ थे? ग्रो अप नक्श राजवंशवंश, दुनिया आगे बढ़ गई है और तुम अभी भी वहीं पर अटके हो? मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है, मैं इशिका से बात करने आया था और उसी से बात करूंगा, नक्श ने बदतमीजी से जवाब दिया। उसने पार्थ से उलझना सही नहीं समझा। नक्श ने फिर से इशिका का रुख करते हुए कहा, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं इशिका, अगर इस तरह जिद करती रही तो हमारे बच्चों को नुकसान हो सकता है। नक्श किसी साइको की तरह बात कर रहा था। उसकी बातें सुनकर पार्थ के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। उसने नक्श के कंधे पर टैप करके कहा, मैं कह रहा हूं तुम्हें सच में एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। इशिका और अभिमन्यु का बच्चा तुम्हारा कब से हो गया? आप बीच में अपनी नाक घुसाना बंद करेंगे? ठीक है, इशिका से गलती हो गई होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बच्चा किसका है। मेरे लिए ये इशिका का बच्चा है तो मेरा बच्चा हुआ। मैं इशिका और अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगा, उसे इस हालत में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, नक्श ने जवाब में कहा। नक्श की बातें सुनकर उन सबको गुस्सा आ रहा था, खासकर राधिका को। उसे अपना वक्त याद आ गया था जब उसने आदर्श के सामने शादी करने की बात रखी थी और साथ ही उसे केशव के बच्चे से प्रेग्नेंट होने का बताया था। तब उसने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि ये बच्चा केशव का नहीं बल्कि राधिका का है और वो उसे अपने बच्चों की तरह पालेगा। राधिका को हमेशा ही लगता था कि आदर्श आयशा की गलतियों को नज़रअंदाज इसलिए करता है क्योंकि वो राधिका की बेटी थी, जबकि सच तो ये था कि वो उसकी खुद की बेटी थी और राधिका की बेटी को उसने कभी उसका बच्चा नहीं बल्कि केशव का ही बच्चा समझा था, तभी उसे बदल दिया था। राधिका ने गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए नक्श से कहा, तुम यहां से जा रहे हो या मैं पुलिस को कॉल करूं? मिसेस सिंघानिया, कम से कम आप तो मेरी बात को समझिए। ठीक है, मुझसे गलती हो गई जो मैंने इशिका को छोड़कर आयशा से शादी कर ली, लेकिन आप अच्छे जानती हो कि मैं अभिमन्यु चाचू से एक अच्छा पति साबित हो सकता था। चाचू ने तो कभी ठीक से इशिका को टाइम तक नहीं दिया होगा। आयशा कितनी भी गलतियां क्यों ना करे, लेकिन मैं उसे हर तरीके से सपोर्ट करता था। आप खुद सोचिए कि मैं कितना अच्छा पति साबित हो सकता हूँ इशिका के लिए, नक्श ने रिक्वेस्टिंग वे में कहा, मानो वो इशिका का रिश्ता लेकर आया हो। नक्श उन सबको समझाते हुए थक गया था, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अब उसे गुस्सा आने लगा था। उसने इशिका का हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए कहा, बस बहुत हो गया, तुम चलो मेरे साथ, अगर इन लोगों के साथ रही तो तुम पागल हो जाओगी। तुम्हें इस वक्त प्रॉपर केयर की जरूरत है और वो सिर्फ मैं दे सकता हूँ। इनके भरोसे रही तो ठीक से खाना तक नहीं खा पाओगी। देखो एक दिन में कैसी हालत कर ली है तुमने अपनी। नक्श इशिका का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए दूसरी तरफ पलटा ही था कि उसके सामने अभिमन्यु खड़ा था, जो बेहद सख्त निगाहों से उसे घूर रहा था। अभिमन्यु की निगाहें ही काफी थी नक्श के दिल में डर पैदा करने के लिए। उसने जल्दी से इशिका का हाथ छोड़ दिया था, लेकिन अभिमन्यु इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। उसने खुद सारी बातें अपने कानों से सुनी थी। डॉट डॉट डॉट, अभिमन्यु इज बैक। देखते हैं कि अब नक्श का क्या होता है। अभिमन्यु के पास एक और शख्स का आना बाकी है और वो है उसकी मॉम। लेट्स सी आगे क्या होता है।
प्लीज आप पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले चैप्टर को मिलते हैं।